हाउलाइकौम मुनत्तखज़ु मिन दूनी आलिहा, ये लोग हमारी कौम इन्होंने बना ली हैं, और अब हो सकता है अब ये कौम की तरफ को मुतवज्जे हुए हैं, या फिर ये भी उलमा कहते हैं कि शायद एक दूसरे से आप बात कर रहे हैं, यानी आप आपस के अंदर बात कर रहे हैं, या कौम को कह रहे हैं कि ये हमारी कौम है जिसने बना लिया, या डिस्कस आपस में करने लगे हैं कि ये हमारी कौम ने क्या कर लिया, इन्होंने और इलाह बना लिए। अल्लाह को जो एक इलाह है उसको छोड़ के लाउला अलैहिम बिसुल्तान बय्यिन, क्यों नहीं ये लेकर आते हैं इसके लिए कोई वाज़े दलील, कोई सुल्तान, मैंने आपको बताया कि ऐसी हुज्जत जो गालिब आ जाए और बय्यिन बिल्कुल वाज़े वाज़े दलील क्यों नहीं लाते, इसलिए कि बगैर क्लियर प्रूफ के आप कैसे कह सकते हैं कि कोई और भी इलाह है, कोई और मदद करता है। क्या अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से कह के गए थे कि मुझे ही मानना और मुझे ही पुकारा करना, या अजमेर कह के गए थे, या वो हजरत अली हजवेरी जिनको दाता साहब कह के, वो कहते ही थे कि मैं दाता हूं, लोगों मैं दाता हूं, मुझसे मांगा करना। कौन सी हदीस है ये, कहाँ पे लिखा हुआ है ये, इनके जो वहां पे मेजारों पे बैठे हैं उन्होंने इतनी घड़ घड़ के कहानियां बनाई हुई है, इतनी घड़ घड़ के कहानियां बनाई हैं, उनके मुंह की बातें, कुरान एक बात कह रहा है जो हक है सच है, उसको छोड़ के उनकी कहानियों पे हमें बड़ा बिलीफ है कि जी वो फलाना यहाँ पे आया, उसकी मुराद पूरी हो गई, ये हो गया, उसके ख्वाब में आ गए, उसके ये कह दिया, ये इनकी मुंह की बातें हैं, कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। इसीलिए तो कुरान बार बार कहता है लाओ कोई दलील, कोई लाओ दलील के, और दलील क्या होती है, क्लियर प्रूफ क्या है, या तो किसी किताब में लिखा हुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई, ये नहीं कि मैंने खुद बैठ के घर में लिख लिया, वो कोई चीज नहीं होती, वो दलील नहीं होती, या किसी नबी ने बताया, फिर बात समझ आती है, कौन से नबी ने ये बात बताई है, कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ, जब नहीं है तो फिर सुनी सुनाई, बस ना कुछ देखा ना कुछ पता है, बस सुनी सुनाई बातों को ही आगे उसके ऊपर बिलीव करके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई वाज़े दलील होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या दलील है कि एक अल्लाह है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमारे पास क्या दलील है, हमारे पास दलील है कुरान, हमारे पास दलील है हमारे नबी की बात हदीस जो महफूज है, और इसकी भी हमारे पास दलील है कि ये कुरान महफूज है और उसका एक हर्फ भी बदला नहीं, इसकी भी हमारे पास दलील है। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी बात नहीं होती, किसी के ऊपर भी यकीन करने से पहले बहुत जरूरी है कि वो देखें कि इसके पास क्या प्रूफ है, और फितना दज्जाल में भी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत कुछ दिखाएगा, बड़े शोबदे होंगे उसके पास, इसको जिंदा कर रहा है, उधर से खजाने निकाल रहा है, ऐसा आजकल कई ये जो शोबदेबाज होते हैं ना, कई लोगों ने बताया अभी उसके उनके प्रोग्राम भी बने हुए हैं, वो जादूगर से हैं, क्या करते हैं पता नहीं, आदमी को लिटा लेते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर वो जिंदा भी खड़ा हो जाता है, फिर किसी ने मेरे से पूछा देखें जी हमने तो ऐसा खुद देखा जाके, देखें ऐसा देखना भी गलत है, जादू हराम है, और ये देखना भी वो पता नहीं क्या करते हैं, आंखों के ऊपर कुछ कर देते हैं या क्या है कि इंसान को ऐसे नजर आता है, लेकिन दज्जाल तो वाकई जिंदा करेगा, वाकई जिंदा करेगा, तो क्या फिर मान लेंगे उसको खुदा, तो कहते कि अब आप इसके बारे में बताएं, अब क्या इसके बारे में बताएं, क्योंकि कयामत के करीब तो ऐसे फितने आएंगे, हमें क्या जरूरत है, जब हमारे हमारे ईमान है कि एक अल्लाह ही जिंदा करने वाला है, क्यों आप इन जादूगरों को जाकर देख रहे हैं। तो इसलिए उसके पास कोई क्लियर प्रूफ नहीं होगा, ना वो कुरान से साबित कर सकता होगा, ना किसी पैगंबर ने बताया, ठीक है, वो कहेगा कि मैं जिंदा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं खुदा हूं, ठीक है, तो कोई बात मानने के लिए जरूरी है कि सुल्तान सुल्ताने बय्यिन हो किसी के पास। और यहां से हमें हमने ये भी देखा कि उन्होंने कितने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हमारा अकीदा क्या है, वो डरे नहीं ये बात कहने से पहले। अच्छा, जब हम अपने अकीदे के ऊपर होते हैं ना फॉर्म, तो पता नहीं हम क्यों डरते हैं, कभी हमें ये डर होता है कि पता नहीं हाय लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कभी हमें ये डर होता है हमें आउटकास्ट ना कर दें, हम अपनी महफिलों में से नहीं निकाल दें, या फिर पता नहीं हम स्टैंड आउट ना करने लगे कि लोगों में प्रोमिनेंट हो जाएं, फिर क्या बातें करेंगे, फिर क्या होगा, फिर कहीं ये ना कोई कह दे वो ना कह दे, नहीं इस बात जो आपका बिलीफ है उसको आप बता सकते हैं कि ये मेरा बिलीफ है, किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे। क्या उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि इनको किसी तो पसंद नहीं आएगा तो हम ना कहेंगे। तो और ये एक बात देखें, यहाँ पे बड़ी ही प्यारी बात है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हा उलाई कौमु ना हमारी कौम, हालांकि वो तो काफिर थे, फिर क्यों उन्होंने कहा हमारी कौम, इसलिए कि आप उनके कुफर से बेजार हो सकते हैं, उनके जुल्म से बेजार हो सकते हैं, उससे नफरत कर सकते हैं, उनके स्टांस को बुरा समझ सकते हैं, मगर एंड ऑफ द डे ये मत भूलें कि जिन लोगों में से हैं वो आपकी कौम है, वो आपका मुल्क है, वो आपके दिल में उनके लिए खैर ख्वाही होनी चाहिए, ये नहीं कि उनसे ही नफरत शुरू कर दें। ठीक है, तो वो फिर भी कौमों ना ही कहते हैं, ये हमारी कौम, ये नहीं कि ये काफिर लोग, ये देखो जरा ये क्या कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि खैर ख्वाही हमेशा रहनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देख लें और दूसरे नबियों को भी देख लें, तो वो क्या कहते हैं, या कौमी, क्या वो उनके भाई थे या उनके कोई बहुत चहीते थे या उनके क्या थे, हाँ उनके खानदान कबीले वाले, उनके एक ही खून के रखने वाले लोग थे, लेकिन कौमी इसलिए कहते थे कि उनको उनसे खैर ख्वाही थी कि ये मेरी कौम है। जब तक आप इस तरह का दर्द नहीं रखेंगे क्या किसी को तबलीग करेंगे, जब नफरतें ही पाली होंगी, ये तो ऐसे, ये कुफर से जरूर नफरत करें लेकिन लोगों से नहीं। फमन अगला मुमिमा निफ्तरा कतिबा, कौन उससे बड़ा जालिम हो सकता है जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे, ये बात तो बार बार कुरान में आती है, तकरीबन 9 दफा कुरान में आई हुई है कि कितना बड़ा जुल्म है अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, बड़ा गुनाह है। जैसे हम सूरह आराफ में भी पढ़ के आए हैं ना कि वहां पे अल्लाह ताला ने हराम चीजों की लिस्ट बनाई, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल्फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन, और उसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वा अन तकूलु अल्लाहि मा ला तालमून, कि तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें करो कि जो तुम नहीं जानते, और यानी झूठ बांध दो, अपनी तरफ से बातें लगा दो अल्लाह ताला के ऊपर। और सबसे झूठी बात जानते हैं क्या है, शिर्क, सबसे झूठी बात है कि कोई जो अल्लाह के ऊपर लगाता है, हदीसें घड़ना, खुद ही बना बना के कह देना ये हदीस है, कोई भी किसी की सेइंग बड़ी अच्छी लगी उसको ताकि लोगों में पॉपुलर हो जाए, चलो हमारी तो नीयत भाई अच्छी ही है ना, वो कह देते हैं वो जिसने, हर रमजान से पहले आ रहा होता है, जिसने रमजान की पता नहीं इतला दी लोगों को वो जहन्नुम से पता नहीं आजाद हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, तो ना कोई ऐसी हदीस, ना कोई ऐसी, वो जो व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर जितनी जगहों पे हम फैला सकते हैं बस आगे आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो ये हदीस गढ़ना भी क्या है, अल्लाह पे झूठ, कैसे अल्लाह पे झूठ, तो आपसे सलाम की हदीस है, लेकिन जब हमें पता है कि आप सलाम अपनी अपनी तौर पे कुछ नहीं कहते थे, वो ही कहते थे जो अल्लाह ताला ने फरमाया, तो जब हम कहते हैं ये आपसे सलाम ने फरमाया तो इसका मतलब हमने कहा ये अल्लाह ताला ने उनको फरमाया, तो कितना बड़ा ये झूठ है, अल्लाह ताला ने तो ऐसी बात नहीं की। इसीलिए उलमा इतने मोहतात होते हैं ना फतवा देने में, ऐसी बात करने में बहुत मोहतात होते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती, कितनी बड़ी बात है अल्लाह के ऊपर झूठ बांध देना। इसीलिए हमें ये नहीं, कभी भी पहले भी मैंने कहा था ये कभी नहीं कहना चाहिए हाँ मुझे पता है मैं बताती हूँ, जब तक आपको 110% नहीं श्योर हो जाए, अब बिल्कुल 100% आपको पता है कि यही है तो तब आप बात करें, लेकिन वैसे ही ना कहते जाए। ठीक है, तो ये दो आयात हमें क्या सिखाती हैं कि जम जाओ अल्लाह के रास्ते पे, जम जाओ अल्लाह के रास्ते पे, और अल्लाह ताला के मुतल्लिक ऐसी कोई बात ना करो जो कि आपको इल्म नहीं है, झूठ ना बांधो अल्लाह के ऊपर, अपने ओपिनियन मत रखो। ठीक है, वह इजे अतजल तुम वमा याबुदून इल्लल्लाह, और जब इजे अतजल तुम, याद करो कि जब वो अलग हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, अजल कहते हैं अलग होने को, तो जब उन्होंने, जब तुमने छोड़ दिया उनको, यानी जब असहाबे कहफ ने उनको छोड़ दिया, अपनी कौम को, उनसे अलग हो गए, वमा याबुदून इल्लल्लाह, और जिनकी वो इबादत कर रहे हैं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह की, और नहीं वो इबादत करते मगर अल्लाह की, ये भी एक है, वो नहीं इबादत करते अल्लाह की, और जिनकी वो इबादत कर रहे हैं सिवाय अल्लाह के उनको भी छोड़ दिया। अगर हम पीछे से जोड़ें तो क्या मतलब है, जब उन्होंने छोड़ दिया उनको यानी अपनी कौम को, वमा याबुदून, और जिनकी वो इबादत करते थे उनको भी छोड़ दिया सिवाय अल्लाह के सिवा सबको ही छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा आप उसी तरह से भी इसको देखें, वाइज़े तजल तुम, ये बड़ी प्यारी एक बात इसके अंदर आती है इस वाली तफसीर में, कि जब उन्होंने जब तुमने उनको छोड़ दिया, और फिर ये ब्रैकेट करें वमा याबुदून इल्लल्लाह, ये जुमला मोतरिजा है। जुमला मोतरिजा क्या होता है कि बात करते करते कोई बीच में बात, जैसे मैं आपको लेक्चर देते देते कहूँ कि ये बात हो रही थी और आप अपनी आवाज चेक करें कि आवाज ठीक आ रही है आपको, ये जुमला मोतरिजा है, यानी बीच में कोई और बात कर दी फिर उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू शुरू कर दूं, कि अब वो उसका हिस्सा नहीं है मगर बीच में अब मैंने कोई बात की, तो ये बीच में अल्लाह ताला ने बात की, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कि जब वो अलग हो गए उनको और वो नहीं किसी की भी इबादत करते थे सिवाय अल्लाह के, जब तुम अलग हो गए उनसे और वो किसी की नहीं इबादत करते थे सिवाय अल्लाह के, ये माना है। यानी अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत और कितनी उन उनकी ये अदा प्यारी लगी, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये उनके बारे में बताते बताते कि तुमने छोड़ दिया उनको और वो नहीं इबादत करते थे सिवाय अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते थे, ठीक है। और फिर दोबारा बात को कंटिन्यू किया, तो ये बड़ा ही खूबसूरत मकाम है इस सूरत में, क्योंकि अल्लाह ताला की एप्रिसिएशन है इसके अंदर उनके लिए, कि वो तो सिर्फ अल्लाह वाले थे, अलग तुम हुए उनसे और वो सिर्फ अल्लाह वाले थे, क्योंकि ऐसे लोग कम ही होते हैं जो तूफानों में खड़े हो जाएं, जो मुखालफतों में खड़े हो जाएं, जो सख्त हालात में और फितने के हालात में, ये फितने के हालात थे ना, जो उनकी कौम एक पूरी तरफ जा रही थी और वो अलग हुए, और याद रखिए फितना दज्जाल में भी लोग चौक दर चौक दज्जाल के पीछे जा रहे होंगे, जिसको देखो वो उसी तरफ होगा, लोग भी आपको इसी तरफ चलने को कह रहे होंगे, उस वक्त खुद को उनसे काट के अलग हो जाना ये बहुत मुश्किल भी बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सारी की सारी कौम में खानदान और औरतें तो ज्यादा ही दज्जाल के पीछे होंगी, हदीस से पता चलता है अक्सरियत उसके पीछे होगी, दुनिया सारी उसके पीछे होगी, काफिर तो सारे होंगे ही होंगे, यहूदी भी होंगे और भी जितने भी काफिर हैं सब उसके पीछे होंगे, मुसलमानों की भी कसीर तादाद होगी। तो अब आप सोचें, जो यही सोच लें कि जो उसके सामने ही जाएगा वो उसका भी ईमान चला जाएगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ईमान वाला अपने आप को समझता होगा मैं ईमान पे हूं, लेकिन उसके सामने जाएगा तो उसका भी ईमान चला जाएगा। अल्लाह अकबर। तो इतने फितने के दौर में भी वो इबादत कर रहे, वो नहीं इबादत करते सिवाय अल्लाह के, फाउ इलल कहफ, तो पनाह ले लो, पनाह लो, फाउ अमर है, पनाह लो कहफ में। अब अगर अल्लाह ताला की बात है तो अल्लाह ताला उनको कोई वही तो नहीं कर रहा, मगर इसको कहते हैं इल्हाम, जैसे अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा के दिल में इल्हाम डाला था ना, दिल में ख्याल डाला था, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जब रहनुमाई होती है तो बाज दफा दिल में ख्याल डाल दिया जाता है आम लोगों के, जो कोई पैगंबर नहीं होते, तो वो उनके दिल में ये ख्याल डाला गया कि जाओ पना लो अल कहफ में। अल कहफ से पता चलता है वो खास गार जिसमें ये जाके बैठ के रखीम पढ़ा करते थे, इबादत किया करते थे, पहले भी जाते थे ना इस बार में, तो चलो वहां चलो। अच्छा, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती व युहयी लकुम मिन अमरिकुम मिरफका, वो फैला देगा अल्लाह ताला, फैला देगा तुम्हारा रब जो है वो फैला देगा तुम्हारे लिए अपनी रहमत में से, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में सहूलत का सामान, आसानी तुम्हारे लिए कर देगा, यही उनकी दुआ भी थी ना, यही उनकी दुआ थी जब वो कहफ में एंटर हो रहे थे, तो उन्होंने यही तो कहा था। ये देखिए आयत 10 में, रबना आतिना मिल्लदुन का रहमतन, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए फैला देगा, गार तो तंग है मगर रहमत फैली होगी। और जहां पे अल्लाह की रहमत आ जाए फिर वो फिर तंग जगह भी कुशादा हो जाती है इंसान के लिए। और अल्लाह की रहमत ना हो तो बड़े बड़े घरों में भी रह के लोग तंग हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हें आसानी का तुम्हारे लिए मामला कर देगा, सहूलत का मामला कर देगा। इतनी सहूलत होगी कि तंग जगह भी तुम्हारे लिए सहूलत वाली बन जाएगी। और देखें अल्लाह ताला ने उनके लिए ये एक जगह छुपने की भी कर दी, पनाह लेने की कर दी। अल्लाह ताला तुम्हारा हाल भी दुरुस्त कर देगा। अल्लाह के लिए जब कोई कुछ छोड़ता है ना, तो अल्लाह ताला, मैंने आपको बताया, उसको छोड़ता नहीं है। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तो अपना घर छोड़ा था, अल्लाह ताला ने फिर क्या कुछ नहीं उनको दिया। आज तक हम उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र खैर दुनिया में हर उम्मत में। मगर जब उन्होंने एक कुर्बानी दी थी तब, ये भी जब इद कामू, जब ये खड़े हो गए तब ये सब कुछ हुआ। हम चाहते हैं हम कुछ ना छोड़े, हम कुछ ना करें, बस गैब से हमारे लिए मदद आती रहे, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, हमने नहीं कुछ करना। ऐसे नहीं होता। वो पहुंचे, पनाह ली, इसका मतलब है कि अब उनके घरों के अंदर उनके लिए पनाह नहीं रह गई थी, सेफ्टी नहीं थी, वो भागे हैं वहां से। पनाह तो वही लेता है ना जो भागता है कहीं से, हिफाजत के लिए पनाह ली जाती है ना। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि ये उनमें से जो बड़ा था उसने कहा, ये बात उसने कही जब वो उन्होंने जब छोड़ दिया तुमने उनको, अमा याबदूना फाबू, तो उसने कहा, बड़े वाले ने कहा, बस पना लो गार की तरफ, चलो चलो उस गार की तरफ, तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहमत करेगा और तुम्हारा मामले में आसानी कर देगा। मिर्फक, मैंने आपको बताया, रिफ्क से है, रफीक भी इसी से होता है, ठीक है, तकिया भी इसको कहते हैं। तो अब है तो गार, और कहा गया कि अल्लाह ताला इसमें आसानी कर देगा, है गार और रहमतें फैला देगा। बजाहिर तो कहीं नहीं नजर आ रहा, मगर ये क्या है, ये अल्लाह ताला से जो हुस्ने जन रखता है ना, ये बदतरीन हालात है। अपेरेंटली कुछ भी ऐसा नहीं है, अपेरेंटली कुछ ऐसे गार है जैसे दुनिया के गार होते हैं, कोई स्पेशल सोने का तो नहीं बना हुआ, या उसमें कोई बिस्तरे तो नहीं बिछे हुए। अब हालात क्या है, कौम पीछे पड़ी हुई, कत्ल करने के दर पे है लोग, पता नहीं इनकी तलाश में, हो सकता है निकल भी चुके होंगे, किधर भाग गए, इनको पकड़ के लेकर आओ। और वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फैला देगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा रब अपनी रहमत में से तुम्हारे लिए सहूलत का सामान कर देगा। और बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान के ऊपर जब मुश्किल हालात हो तब भी वो अल्लाह से हुस्ने जान रखे, ये बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा बड़े लोगों का काम ये होता है, थोड़े दिले जो लोग होते हैं ना, बस जरा सी बात के ऊपर ये रो धो के, हाय अब तो कुछ नहीं होना, अब बस गया सब कुछ खत्म, अब क्या हो सकता है, अब हम तो इतने देर से मांग रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं, कोई बीमारी आ जाए, कोई घर में प्रॉब्लम आ जाए तो फौरन मायूसी की बातें, लेकिन हुस्ने जन कितना है ना। तो हमें भी समझना चाहिए, बीमारी आए तो तब भी दिल में यकीन हो कि अल्लाह है ना, वो अशाफी है। जिंदगी में कुछ खराबी आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो अल्लाह है ना, वो कामों को संवारने वाला है। गुनाह हो जाए तो अल्लाह है ना जो माफी को कबूल करने वाला है। मुखालफत आए तो अल्लाह है ना जो अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। वो मेरा रब मेरे साथ है ना, वो मेरा हादी है, अल हादी, अल्लाह है। इस यकीन के साथ इंसान आगे बढ़े, अल्लाह करेगा ना, वो निकालेगा मुझे इन हालात से। अब क्या इनको क्या नजर आ रहा था, मुझे बताएंगे आप? साबे कहाफ को क्या नजर आता रहा था वार में, जो वो कह रहे हैं अल्लाह अपनी रहमत निछावर कर देगा, फैला देगा, जामत भी ये नहीं, फैला देगा अपनी रहमत में से, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है, उसमें से जरा भी किसी को मिल जाए तो बहुत है। तो मुझे आप बता सकते हैं क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, बजाहिर कुछ भी नहीं, अगर बात होती है दिल के यकीन की, बात होती है आप कैसा देखते हैं अल्लाह ताला को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना, अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता है, जैसा आप गुमान करें। और आप कहेंगे नहीं, अल्लाह ने तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, अल्लाह ने तो मेरे साथ यही करना है, मेरे साथ तो हमेशा ही उल्टा होता है, मेरे साथ तो कभी भी नहीं मेरा साथ देगा अल्लाह ताला, कभी भी नहीं मुझे माफ करेगा। तो ठीक है, फिर जाओ ऐसे ही। तो अब वो छुपते छुपाते आ रहे हैं, मोस्ट वांटेड हैं, कोर्ट में अभी उनकी पेशी हुई है, अभी वो पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के वहां से निकले हैं, और क्या क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर, या अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमा, ऐसा यकीन अता फरमा या रब। तो अल्लाह ताला ने वाकई उनके लिए ईज कर दी ना फिर। और देखें कि यंशुर और युहयी, ये दोनों फेल है ना, और इनके आखिर में जजम आ रही है। असल में फेल के आखिर में जजम नहीं आती, पेश आती होती है, मगर जब ये जजम आ जाती है ना, तो उसके अंदर एक माना बन जाता है यकीन का, कि उनको यकीन था। अब ये यकीन कौन देख रहा है, हजारों साल गुजर गए, उनके दिलों में कौन झांक के देख रहा है? ये एंड की आयत में आपको ये बात समझ आएगी कि उस वक्त भी अल्लाह ही है ना जो देखने वाला है, कितना अच्छा वो देखने वाला है, उसको पता है कि ये यकीन है इनके अंदर, और उसने कुरान में बता दिया कि उनको यकीन था कि अल्लाह रहमत को फैला देगा हमारे लिए। उन्होंने यही दुआ भी की, अल्लाह हमें जरूर हमारे लिए सहूलत का इंतजाम करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पे तो कोई भी सबब नहीं है, कैसे करेगा कैसे करेगा, हमें तो नहीं समझ आती कैसे। उससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, जब उसने मुश्किल से निकालना है ना, तो इंसान को समझ भी नहीं आती वो कैसे निकाल देता। हम अपने दिमाग को लड़ाते हैं वो कैसे करेगा, वो कैसे रास्ता निकालेगा, कितना जबरदस्त होप है ना इसके अंदर कि वो उसका काम है, उसका काम वो जाने उसने कैसे करना। हमें क्या पता, हमारी तो अकल ही बहुत छोटी। अल्लाह हु अकबर। और वो फिर निकालता है, तो वो दिन के जो पहला हिस्सा है, कहते हैं जैसे इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अवल नहार जो था ना, दिन का शुरू का हिस्सा, उसके अंदर वो गार में दाखिल हुए थे, और उन्होंने भी दुआ भी की। अब देखें उसके बाद सो गए, सोने से पहले क्या बातें हो रही हैं, अल्लाह की रहमत की बातें हैं, उसके ऊपर यकीन की बात, उसके साथ सोए हैं और उसके साथ अच्छे गुमान के साथ सोए हैं, दुआ मांग के सोए हैं। आप हम भी सोते हैं, जिस वक्त हम सोने लगते हैं, हम भी इससे सबक सीखें कि हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए। क्योंकि तो जब रात आती है ना, तो फिकरात हमें घेर लेती हैं, और हम मेरे दिमाग के ऊपर इतनी चीजें जो सारा दिन से भी नहीं आई होती, अब फारिग हो गया जहन, करवटें बदलते इधर उधर, फिक्रें परेशानी के अंदर, नींद ही नहीं आती। ठीक है, इन ये सो गए, अल्लाह ने सुला दिया, थपकी दे के सुलाया अल्लाह ताला ने, पिछली सबक में हमने पढ़ा है ना, थपकी दी। हालांकि देखें घर वालों को छोड़ के आए, उनको खुदा खुदाफिज भी नहीं कहने का मौका मिला, तो यहां से यहां तक भी जाना हो तो हम घर वालों से गले मिलते हैं, फिर रोते हैं, फिर कई दफा वेव करते हैं, फिर जाते जाते भी देखते जाते हैं पीछे मुड़ मुड़ के, फिर वहां पहुंच के भी कहते हैं बड़े याद आ रहे हैं, हाय अम्मा हाय फलां। ये तो कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे, इनको फिक्र है तो अपने ईमान की फिक्र है असल में। ये नहीं है कि हम उनको छोड़ आए, आए अब क्या होगा, पता नहीं कब उनको देखेंगे, आए हमने तो मुलाकात भी नहीं की, नहीं, और अल्लाह ने सुला दिया। अब ये आगे अल्लाह ताला का मामला है, वो ये दुआ करके सो गए, ये अल्लाह तेरी सुपुर्द है, अब तेरा मामला है, तूने कैसे आसानी करनी है, तुझे ही पता है। तूने कैसे रहमत भेजनी है वो तू जाने, तेरे काम है ना। तो अल्लाह ताला के पर छोड़ा तो करे ना, और यकीन के साथ छोड़े, या सारे काम हमने खुद ही करने हैं तो फिर उसको क्या इला माना, अपने क्या रब माना, तो सारी कायनात चला रहा है। तो ये मेरा तो काम बहुत ही छोटा सा है। अल्लाह अकबर, मैं आपको ही नहीं कहती, मैं अपने आप को भी कहती हूँ, अल्लाह हमें, या अल्लाह हमारे ईमान को ऐसा कर दे, हम सभी कमजोर ईमान वाले। अब ये एक और बात यहाँ पे समझने की है, वाइज़े तज़ल तुमु हो, उलमा ने इसको भी एक, यानी एक इसके ऊपर भी पॉइंट रेज किया है कि वो अलग हो गए थे अपनी कम्युनिटी से। तो क्या इस तरह सही है अलग होना, या कब हमें पता चले? क्योंकि एक सवाल मेरे से काफी साल पहले किसी ने किया था कि इतने फितने हैं हमारे इर्द गिर्द, तो आप बताएं कि क्या हमारा टाइम आ गया है कि हम अब अलग हो जाएं? तो याद रखिए, उलमा कहते हैं कि आप जहां पे रह रहे हैं, चाहे कितने भी फितने हैं, अगर आपके जरिए इंसानियत को फायदा पहुंचने का इम्कान है, आप उनको तबलीग कर रहे हैं, उनको बास कर रहे हैं, चाहे जुबानी चाहे अपने अमल से, तो आपको वहीं रहना चाहिए। जिस वक्त आपको लगता है ना कि मेरा अपना दीन ईमान खतरे में पड़ गया, मुझे डर है कि मेरा अपना ईमान जाता रहेगा, या वो लोग आपकी जान के दर पे हो गए, जैसे आज चाइना में हालात है, तब आप वहां से फिर हिजरत करें। आप देखिए ना, आप सरसर मक्का में रहे थे कि नहीं रहे थे? वहां पे सारा माहौल काफरों का ही था, मुखालफत ही थी। तो तब तक हिजरत नहीं की जब वो जान के दर पे हो गए, और आप तो जिंदा ही नहीं रहने देना का सवाल हो सकता था कोई, तबलीग का रास्ता तो बात की बात है, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो तबलीग क्या करेंगे? तो जिंदगी का ही रास्ता बंद करने का उनका प्रोग्राम हो गया, तब आप सल्लम ने हिजरत की थी। तो इसलिए ये चीज को समझना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि इंसान जिस सोसाइटी में रह रहा, नहीं जहां पे बहुत ये है तो हम यहां से भाग जाएंगे तो फिर उन लोगों को कौन बताएगा। तो एक दाई के लिए जरूरी है कि वो वहां रहकर अपना काम करे, ठीक है। और आप ये भी देखें कि एक हिजरत वो होती है जो फिजिकल होती है, और एक हिजरत होती है जो जहनी होती है। पहले जहनी हिजरत होती है, यानी दिल से जो आप हिजरत कर लेते हैं, अब आप उन लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ जॉब करते हैं, लेकिन आप दिली तौर पे उनके साथ नहीं है, आपका उनके साथ कोई दिल का ताल्लुक नहीं, ना आपको उनकी बातें पसंद है, ना उनके काम पसंद है, लेकिन आप मजबूर हैं वहां पे बैठे हैं। अब आप उनको बताते हैं जो जितनी भी हद तक अपने अमल से, अपने बात से तबलीग करते हैं, पहले ये होती है। फिर जब एक्सट्रीम ही माहौल या आपके हालात हो जाएं ऐसे एक्सट्रीम के, ना अब आप तबलीग कर सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो गया, फिर आप फिजिकली भी अलग हो जाते हैं, जैसे ये लड़के हुए, समझ आए? तो जब ऐसे हालात हो जाएं, जैसे कि अब दज्जाल जब आएगा, कि आप सरसर ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान वाले को अपने दीन को बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा और लोगों से अलग होना पड़ेगा, तो एक दौर ऐसा वाकई आएगा, क्योंकि उस वक्त में ईमान इसके सिवा किसी चीज से नहीं बच सकता, फिर ईमान चला जाएगा अगर वहीं पे रहते रहे, तब तो लाजिम है कि इंसान हिजरत करे। लेकिन अगर ऐसे हालात नहीं है तो आप लोगों को छोड़ के अलग थलग हो जाएं, जिन्हें मैं नहीं इनके अंदर रहती क्योंकि ये नहीं मुझे पसंद, और वो करते हैं तो वो नहीं मुझे पसंद है। असल बात तो यही है ना कि उनके अंदर रह के तबलीग करें, वो तो मुश्किल लगता है, वो करनी नहीं है, तो आसान ये लगता है कि चलो जाके किसी जंगल में बैठ जाए, वहां पे बस अल्लाह अल्लाह करते रहे, या चलो आओ किसी ऐसे ही माहौल में चले जो हमारा मुआफिक हो। तो हाँ, कोई इतना ही कमजोर है, वो किसी तरह भी, उसका ईमान ही जाने का खतरा है, वो किसी तरह पे भी नहीं वहां पे उस अपने ईमान को बचा सकता, तो ठीक है फिर वो चला जाए। मगर हदीस में आता है कि वो आदमी जो लोगों से मिलता जुलता और उनके साथ सबर करता है वो बेहतर है उससे जो लोगों से मिलता जुलता भी नहीं है और उनके साथ सबर भी नहीं करता। बहुत वुसत है इसके माने में, इस हदीस में। बाज़ हम लोगों से तंग आ जाते हैं, कहते हैं हम बिल्कुल अलग होके बैठ जाते हैं, मैंने नहीं किसी से मिलना जुलना, मैं नहीं किसी से बात करती, मैं, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं। लोग तकलीफ पहुंचाएंगे, लोग उल्टे सीधे भी काम करते हैं, आप उनको कहेंगे वो फिर आपके मुखालिफ होंगे, फिर वो आपको बातें सुनाएंगे। अब ये बातें हमसे सुनी नहीं जाती, हमें तो मसला पड़ जाता है, तो फिर आप, हम कहते हैं तो आइसोलेट ही हो जाए। आइसोलेशन कोई सलूशन नहीं है। आप अल्लाह अल्लाह अपने करते रहे, आपका सारा माहौल जो है वो किस तरफ को जाने लगा। मैं और आप कहेंगे नहीं जी मैं तो किसी से मिलती जुलती नहीं, ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ और मैं बस अपने ही बैठी हूँ। तो इससे बेहतर है वो जो लोगों से मिलता जुलता है, उनके साथ सबर करता है, उनको समझाता है, उनको बताता है, उनको तबलीग करता है और उनकी मुखालफत पे सबर करता है। क्योंकि मुखालफत तो आएगी, लोग आपको बातें सुनाएंगे, लोग आपको बुरा भरा भी कहेंगे, उस वक्त सबर करना है, वो हार तो नहीं पहना देने ना उन्होंने। तो इस चीज को समझना चाहिए कि हर एक हालात ऐसी नहीं है कि हम सामान उठाएं और बस हम यहां से हिजरत करके उधर चले जाएं। आज तो खैर दुनिया के अंदर जहां जहां तक तो इंटरनेट पहुंच चुका है, वहां पर सभी चीजें पहुंच चुकी हैं एक जैसे ही, जिसको कहते हैं वाकई दुनिया, कहा करते थे पहले जमाने के अंदर लोग कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी, अब बन चुकी है, अब बन चुकी है। जो कहीं पे भी दुनिया के अंदर है वही दूसरी जगह हो रहा है। कोई आपको ऐसे कैमोफ्लाज करके बैठने नहीं कहीं मिलेगा कि आप अपने आप को छुपा के कहीं बैठ जाए, वो पता ही ना चले, सब चीजें आपके घर तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में सलूशन ये नहीं है कि हम बस अब जाएं, और हम इस वक्त वो हालात नहीं है। हाँ आएंगे हालात लेकिन अभी नहीं है, अभी अब फिर भी मौके हैं, फिर भी आपके पास चांसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, आप उठ सकते हैं, आप तबलीग कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि वो हमें गालियां देंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है तो हम सोचते हैं कि अब मौके बंद हो गए, क्योंकि लोग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, चाहे वो सुनने को तैयार नहीं, आप कहते जाए, आप बताते जाए, आप हिकमत से काम लें और आप सब्र करें उसके ऊपर। लेकिन हमारी अना जब बहुत बड़ी होती है ना, और हमसे ये बातें अपनी जात पे नहीं सुनी जाती, तो तब हम ये सोचते हैं बस हम हिजरत ही कर लेते, अब कोई और सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये इज़ैत तब होगा जब ऐसे हालात हो जाए, वरना आप स्पिरिचुअली दिली तौर पर तो उनसे अलग होंगे, फिजिकली नहीं। फिजिकली आप उनको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, अपने किरदार से, अगर आपसे बोल के नहीं होता तो अपने अमल से, अमल से भी एक तबलीग होती है, अपने अमल से दिखाते रहेंगे। ठीक है, और ये भी हमें देखें, ये बात पता चल गई अच्छी तरह कि यहां पर उन्होंने जो बात की है ना कि और जिनकी वो इबादत करते थे, अगर उस चीज को लिया जाए कि वमा याबुदूना इल्लल्लाह, उनको भी छोड़ दिया, और जिनकी वो इबादत करते थे उनको भी छोड़ दिया सिवाय अल्लाह के। और पीछे भी हमने बात की कि उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं किसी और को पुकारते, तो हमारा जो अकीदा है ना वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हम कुफर का और ताहूत का और अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत की जाती जब तक उनका इनकार ना करें। तब तक हमारा, अगर हम ये कह देते हैं हाँ अल्लाह इलाह है, बस इतना ही कह देते हैं, वो एक खुदा है, हम उसको पूजते हैं, तो आपको निगेट करना जरूरी है, इनकार करना जरूरी है कि कोई और नहीं है इलाह मगर अल्लाह, वमा याबुदूना इल्लल्लाह, ये जरूरी है, नहीं वो इबादत करते। पहले सब के लिए नफी, सूरह काफिरून में क्या है, यही तो सूरते हैं सूरह काफिरून और सूरह इखलास, हम फजर की दो सुन्नतों में पढ़नी सुन्नत है और फिर वितर में भी पढ़नी, काफिरून में आप इनकार करते हैं सब का। ठीक है, ला आबुदू मा ताबुदून कहते हैं, ठीक है, और इखलास में आप कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, उस वक्त आप अल्लाह को एक मानते हैं, इला एक, अकेला मानते हैं, तो नेगेशन है, और उसके बाद आप ये अपना बिलीफ, ये अपनी अफर्मेशन देते हैं, कंफर्म करते हैं कि अल्लाह इलाह अकेला है। ठीक है, दिन की, अब सुबह की शुरू की भी नमाज में और आखिर की भी नमाज में आपको निगेट भी करते हैं, और आप एक दूसरों को निगेट करते हैं, और एक अल्लाह के सूरह इखलास में आप एक इलाह मानते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये एक बात भी हमें ये समझ आती है कि कभी भी आप दुआ करने में सुस्ती ना करें, कभी भी, और दुआ को यकीन के साथ करें, कभी भी उसके अंदर डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने दुआ की है तो आप वो यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह ताला रहमत करेगा हमारे ऊपर और हमें जरूर हमारे लिए सहूलत भी करेगा, ठीक है। तो ये हमें बातें समझ आई हैं इससे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا